पुस्तक 12वीं लेक्चर नंबर 18 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंता नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वच्चायानं नमो लोए सौवसाउनं परमह जिनवरवसहं गणहरवसहं सहेव गुणहरवसहं दुसह परिसहविसहं जैवसहं धम्मसुत्तपारवसहं इयपणमियजिननाहे गणनाहे तहयसेव मुनिनाहे सम्मत्तसुद्धिहेवं वोच्छं सम्मत्तमहियारं
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है जो कषाय पाउर तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा ऋषिवशभ आचार्य जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 12वीं पुस्तक में अभी हम जो ये जो सम्यक अनियोग द्वार देख रहे हैं पृष्ठ संख्या है 208। यहाँ सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक्त के बारे में बात कर रहे हैं। जो जो मिथ्यात्व में से प्रथमोपशम प्राप्त करके सम्यक्त प्राप्त करता है उसकी बात यहाँ चल रही है। उसके बारे में हमने ये अलग अलग बातें देखी थी कि कैसे परिणाम होते हैं तो कहाँ विशुद्ध परिणाम होते हैं। फिर योग कौन सा है, कोई भी एक योग है, केवल मिश्र का योग नहीं, आहार का तो होने का सवाल नहीं है। ना व्यकिरिक मिश्र होता है, ना औदारिक मिश्र होता है, ना ही कार्बन होता है। यानी पर्याप्त जीवन के सम्यक्त की प्राप्ति होती है, वो भी संगी पंचेंद्रिय जीवन की होती है, उसमें भी कहेंगे भव्यों की होती है। तो हर एक मार्गना में हमने उसको लगा के देखा था। अब ये प्रश्न था कि पूर्व में बंधे हुए कर्म कौन कौन से हैं।
सत्ता
तो यहाँ तो सत्ता में यानी वो सत्कर्म यानी उसके प्रकृति की अपेक्षा, प्रदेश की अपेक्षा, स्थिति की अपेक्षा, अनुभव की अपेक्षा, सत्व कैसा होगा प्रकृतियों का, ऐसा यहाँ प्रश्न पूछा गया था। तो वहाँ बताया था कि ज्ञानावरण की सभी प्रकृतियाँ हैं वहाँ पर सत्कर्म रूप से पाई जाती है। दर्शनावरण की 9 के 9 है, वेदनी की 2 है, मिथ्यात्व की 26 तो है ही, किसी के 27 भी होगी, किसी के 28 भी होगी। यहाँ तक तो हमने देखा था। आयु के बारे में बात कर रहे थे कि आयु के बारे में बताया था कि किसी के 1 आयु होगी, किसी के 2 होगी, जिसका अर्थ है कोई बद्धायु होगा, कोई अबद्धायु होगा। अब आगे के कर्मों की बात यहाँ चलेगी, नाम कर्म की बात देख रहे हैं हम। 208 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ नाम कर्म की 4 गति, 5 जाति, औदारिक वैक्रियिक तेजस कार्मण शरीर, उन्हीं के बंधन और संघात, 6 संस्थान, आहारक अंगोपांग को छोड़कर 2 अंगोपांग, 6 सहनन, वर्ण गंध रस स्पर्श, 4 अनुपूर्वी, अग्रु लघु उपघात परघात उच्छ्वास आतप उद्योग, 2 विहाय गति, त्रसस स्थावर आदि 10 युगल निर्माण, ये प्रकृतियां सत्कर्म रूप है। यानी आहार अंगोपांग को छोड़ा, इसंग्र प्रकृति को छोड़ा, तीन को ही कर। गोत्र कर्म की 2 प्रकृतियां नीच गोत्र और उच्च गोत्र सत्कर्म रूप है। तथा अंतराय कर्म की पांच प्रकृतियां सत्कर्मों के रूप है। इन प्रकृतियों का प्रकृति सत्कर्म है, शेष प्रकृतियों का नहीं है। शेष में किसको लिया? कीर्तंकर और आहारक। शंका, पहले उत्पन्न किए गए सम्यक के साथ आहारक शरीर का बंध कर पुनः मिथ्यात्व में जाकर तत्प्राय असंख्यात वे भाग प्रमाण काल के द्वारा उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले जीव के आहारक द्विक सत्कर्म यहाँ क्यों उपलब्ध नहीं होता? समाधान, नहीं, क्योंकि आहारक शरीर की उद्वेलना किए बिना उसके उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति की योग्यता नहीं बनती। इसका अर्थ पहले वो आहारक शरीर की उद्वेलना पूर्ण होती है तब तक इसकी समय समय मिथ्यात्व की अभी चल रही है। इसका अर्थ उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होने का जो काल है वेदक योग्य काल के अंदर अंदर ही पहले आहारक शरीर की उद्वेलना पूर्ण हो जाती है, इसलिए नियम बताया
कि पंचेंद्रिय में रहते हुए उद्वेलना चालू हो जाती है।
मिथ्यात्व में जाने पर हो जाती है ना? मिथ्यात्व में जाने पर होती है ना? उद्वेलना किए बिना उपशम सम्यक्त्व तो प्राप्त नहीं होता, यानी उसके उद्वेलना काल छोटा है, जल्दी हो जाता है, उपशम सम्यक्त्व तो नहीं होता था। अब आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। शंकाकार पूछा, ऐसा किस कारण से है? क्योंकि वेदक सम्यक्त्व के योग्य काल से आहारक शरीर के उद्वेलना का काल स्तोक है, ऐसा परमागम का उपदेश पाया जाता है। आयु कर्म के अतिरिक्त इन्हीं प्रकृतियों का स्थिति सत्कर्म अंतः कोड़ा कोड़ा काड़ी हो गया, कोड़ा कोड़ी के भीतर होता है। यानी पहले तो प्रकृति सत्कर्म बता दिया, अब यहाँ पर आते हैं, ये तो उद्वेलना वगैरह की बात हो गई। अब यहीं से दूसरा स्थिति सत्कर्म का विषय उन्होंने उसी समाधान में शुरू किया कि आयु कर्म की स्थिति में तो कोई चेंजेस होने की कोई वहाँ तो कोई संभावना नहीं है, परंतु जो जिनका सत्कर्म है उन सबका स्थिति सत्कर्म कितना हो जाता है? अंत कोड़ा कोड़ी के भीतर। आयु कर्मों का तत्प्राय स्थिति सत्कर्म जानना चाहिए। विशेषार्थ, प्रथम उपशम सम्यक्त्व के सम्मुख हुए जीव के आहारक चतुष्क बंधक और बंधन और संघात भी ले लेना। अच्छा, जो ऊपर बंधन संघात को अलग गिना है, कहा है आहारक चतुष्क, आहारक द्विक कहा था हमने, आहारक चतुष्क कहा है। वहाँ 148 का ही सब लगाया होगा। वर्ण गंध में तो केवल वर्ण गंध रस स्पर्श इतना ही कहा था। बंधन आहारक, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक बंधन, आहारक संघात। क्योंकि शरीर नहीं होगा तो अन्य भी, उसकी भी सत्ता उसी के साथ चली जाएगी। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के सन्मुख हुए जीव के आहारक चतुष्क और तीर्थंकर इन पांच प्रकृतियों का सत्व संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं। आहारक चतुष्क का सत्व क्यों नहीं पाया जाता, इसका स्पष्टीकरण तो टीका में किया ही है। ऐसे जीव के तीर्थंकर प्रकृति का इसके पूर्व बंध ही नहीं होता, इसलिए उसका सत्व भी संभव नहीं है। शेष सब गतन शिवम है। अब अनुभाग सत्कर्मों को बदलाते हैं। ये स्थिति सत्कर्म उन्होंने बीच में बता दिया। स्थिति सत्कर्म अनुभव कौन सा आहारत संबंधी ना,
हमने पांच पांच लिए थे।
हाँ ये नहीं, हाँ आहारत की नहीं पाई जाती ये मालूम नहीं था, सत्ता में नहीं है ये मालूम नहीं था। समय को के संबंध में बहुत अच्छा है, श्रेणी वगैरह सब इसमें आ गए। अब अनुभाग सत्कर्मों को बतलाते हैं, जो अप्रशस्त कर्म पांच ज्ञानावरण नौ दर्शनावरण असाता वेदनीय मिथ्यात्व सोलह कषाय नौ नौ कषाय सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व नरक गति तिर्यंच गति एकेन्द्रियादि चार जाति पांच संस्थान पांच सहनन अप्रशस्त वर्ण गंध रस स्पर्श नरक गत्यानुपूर्वी तिर्यंच गत्यानुपूर्वी परघात सॉरी उपघात अप्रशस्त विहाय गति स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण शरीर अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादेय अयशस्थिति नीच गोत्र और पांच अंतराय, इनका द्विस्थानीय अनुभाग सत्कर्म वाला होता है। ज्ञानावरणादि समस्त अप्रसिद्ध प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणाहीन होता है ऐसा लिखा था, उत्तरोत्तम लब्धि में ही लिखा था, पंचलब्धि के पुस्तक में जब लिखा था ना, नहीं तो क्या सर्वोत्तम किसको समझते थे, क्षोक्षम लब्धि को, ज्ञानावरण का क्षोक्षम होना संगी पंचमी इतना ज्ञान मिलना उसको कहेंगे क्षोक्षम लब्धि, ऐसा नहीं है। यहाँ तो उन्होंने एक एक प्रकृति गिनाई, वहाँ तो हमने परिभाषा में ऐसा लिखा था कि ज्ञानावरण की समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव अनंत गुणाहीन होता होते चला जाता है ये जो पांच लब्धि के काल में। विशेषार्थ पहले प्राय के लब्धि के काल में ही शुरू से तो अनंत गुणाहीन होता है, प्राय के लब्धि के काल में शुरुआत में जो एक अनुभाग कांडक हो जाता है एक द्विस्थानी हो जाता है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानी हो जाता है यह स्पष्ट कर आए हैं। और उपशम सम्यक के सन्मुख हुआ जीव प्राय के लब्धि संपन्न होता ही है, अतः इसकी भी सत्ता में इसके भी सत्ता में स्थित अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानीय जानना चाहिए। सत्ता की बात चल रही है, यानी हृदय में आएगा तो वो तो हम समझ सकते कि सत्ता में है, हृदय में हीन रूप से आ रहे, सत्ता का अनुभव घट रहा है, सत्ता की बात। विशुद्धिवश इसके त्रिस्थानीय और चतुस्थानीय अनुभव का घात हो जाता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य यह करो, तात्पर्य हुआ यानी उस काल में उसका अनुभव जो घट रहा है, अभी तो समय तो होने अंतर्मूर्त में होने वाला है
तो
तभी तो उसका द्विस्थानी हो चुका पूरा सत्ता का। चाता वेदनीय मनुष्य गति देवगति पंचेंद्रिय जाति औदारिक शरीर वैक्रिक शरीर तेजस शरीर कार्मण शरीर तथा उन्हीं के बंधन और संघात समचतुरस्थ संस्कार औदारिक शरीर अंगोपांग वैक्रिक शरीर अंगोपांग वज्रसद नारा सहनन प्रशस्त वर्णादिचार मनुष्य गत्यानुपूर्वी देवगत्यानुपूर्वी अगुरु लघु परघात उच्छ्वास आतप उद्योग प्रशस्त विहाय गति त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ शुभ सुस्वर आधेय यशस कीर्ति निर्माण और उच्च गोत्र, इन प्रशस्त प्रकृतियों के चतुस्थानीय अनुभाग सत्कर्म वाला होता है। और प्रशस्त का द्विस्थानी हुआ, प्रशस्त का चतुस्थानी हुआ, ये सत्ता की बात है। जो ऑलरेडी पूर्व में पढ़े थे कम अनुभाग वाले वो भी बढ़ गए, प्रदेश सत्कर्म भी, जिन प्रकृतियों का इसके प्रकृति सत्कर्म है, यानी वो पांच प्रकृतियां छोड़कर जिनका प्रकृति सत्कर्म है उनका अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म कहना चाहिए। विशेषात यहाँ पर प्रथम सम्यक के सम्मुख हुए जीव के सत्ता में स्थित प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग चतुस्थानीय बतलाया है। इसका कारण यह है कि इन प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग का विशुद्धिवश घात नहीं होता, किंतु प्रति समय विशुद्धि की वृद्धि होने से उक्त प्रकृतियों के अनुभाग की प्रति समय अनंत गुणी वृद्धि देखी जाती है। ऐसा जीव न तो उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म का स्वामी है, क्योंकि उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म तो वो संकलेश वाला जो हमने देखा था, और न ही जघन्य प्रदेश सत्कर्म का स्वामी है। इसलिए इसके जितनी प्रकृतियों की सत्ता है उनका अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है, यह स्पष्ट ही है। इस प्रकार सर्वप्रथम दूसरी गाथा के प्रथम अवयव के आश्रय से प्रकृति सत्कर्म, स्थिति सत्कर्म, अनुभाग सत्कर्म और प्रदेश सत्कर्म का कथन कर, ये बात ख्याल में आई ना, चार ही प्रकार का सत्कर्म, प्रकृति सत्कर्म में किसकी प्रकृति नहीं होती, कौन सी प्रकृति नहीं पाई जाती प्रेरणा में। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के सन्मुख हुए जीव की सत्ता में आर चतुष्क और तीर्थंकर प्रकृति नहीं पाई जाती, बाकी सभी है, सभी प्रकृतियां वहां विद्यमान। उसके बाद स्थिति सत्कर्म कितना लेना, स्थिति सत्कर्म
अंत कोड़ाकोरी,
आयु को छोड़कर बाकी सभी कर्म जिनकी सत्ता है वो अंत कोड़ाकोड़ी हो जाती। अनुभाग सत्कर्म में क्या होता है मयंक भाई? हाँ, और अप्रशस्त का द्विस्थानीय और प्रशस्त का चतुर्थ, सभी लेना, प्रशस्त में जो कोई है वो सभी उसमें गिनाना। हाँ, अप्रशस्त में भी आवाज आती है बाहर, अप्रशस्त में भी हमने देखे ज्ञानावरण यानी घाती अघाती सभी अप्रशस्त ले लिया आपने, 148 में वो चार से पर वर्ण में सब ले सकते हैं ना।
हाँ, वर्ण गंध स्पष्ट अप्रशस्त भी लिया, प्रशस्त
वो दोनों ही जगह होते हैं। जब हमने प्रशस्त अप्रशस्त देखी थी 84 148 में वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम 20-20 दोनों जगह रखते हैं।
हाँ।
चार रखो या 20 रखो। हाँ, क्योंकि उन्होंने उसके भेद करके नहीं बताया ना, वर्ण गंध रस स्पर्श से कहने से, जैसे आहार के उन्होंने बंधन संघात भी अलग निकाले, उसको अगर गिनेंगे तो इसके भी अलग निकालने पड़ेंगे। हाँ, तो 20 इधर भी और उधर भी दोनों जगह लेंगे, 168 का हिसाब चलेगा।
हाँ, 160
ये विशेषात हो गया अपना। अभी नीचे आते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम दूसरी गाथा के प्रथम अवयव के आश्रय से प्रकृति सत्कर्म, स्थिति सत्कर्म, अनुभाग सत्कर्म और प्रदेश सत्कर्म का कथन कर, ये हुआ था ना, बद्ध पूछा था, ये ऑलरेडी बंधे हुए हैं यानी सत्ता में। अब बंधनी यानी बंधने वालों की बात चलेगी। प्रकृति बंध आदि बंध स्वरूप का निश्चय करने के लिए गाथा के दूसरे अवयव का आलंबन लेकर कथन करते हुए चुनि सूत्रकार इस सूत्र को कहते हैं, केवा अंशे निबंध दीप्ति विहासा। प्रथम सम्यक्त्व के सम्मुख हुआ जीव किन कर्मांशों का बंध करता है, इस पद की विभाषा, यह सूत्र सुगम है। एत्थ पयड़ी बंधो, थिधि बंधो, अनुभाग बंधो, प्रदेश बंधो च मग्धी यौवो। प्रकृत में प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध का मार्गन करना चाहिए। समानांतर पूर्व कहे गए इस बीज पद में अभी अभी जो कहा ना, इन चार बंधों का अनुमार्गण करना चाहिए, यह कहा गया है। यानी इसके बारे में हमें समझना चाहिए, खोजना चाहिए। अब इस बीज पद द्वारा सूचित किए गए अर्थ का विशेष व्याख्यान करेंगे। उनमें से सर्वप्रथम प्रकृति बंध का निर्देश करते हुए तीन महादंडकों का कथन करना चाहिए। यथा पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व सोलह कषाय, पुरुष वेद। अभी यहाँ ऑप्शन नहीं लगा है, यहाँ कौन सा वेद बन रहा है?
पुरुष वेद।
हास्य रति, भय जुगुप्सा। मिथ्या तो सोलह कषाय, भय जुगुप्सा तो ये तो ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं, और अभी मिथ्या तो चल रहा है तो मिथ्या तो वगैरह वो सब बन रहे हैं, परंतु ऑप्शनल में कितनी प्रकृतियां हैं, प्रतिपक्ष प्रकृतियां मोहनी की कितनी है याद है? अभी शाम को विषय चल रहा है ना, नहीं तो मोहनी की प्रतिपक्ष प्रकृतियां नहीं, उनमें से किसी का बंद होगा। जैसे मिथ्यात्व सोलह कषाय भय जुगुप्सा, उन्नीस तो ध्रुवबंदी है, कौन से तीन? हाँ, तो उसमें टोटल सात हो गई, दो युगल की चार हो गई और तीन वेद के तीन हो गए, सात प्रतिपक्षी है। उसमें से बंद कितने का होगा? तो तीन का, एक युगल का और एक वेद का। तो यहाँ वेद में से पुरुष वेद बंधेगा और युगल में से हास्य रति का ही बंध होगा, भय जुगुप्सा तो है ही। अब नाम कर्मों में से देवगति, पंचेंद्रिय जाति, अब ये मनुष्यों की अपेक्षा बात की है, वैक्रिय शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्त्र संस्थान, वैक्रिय शरीर अंगोपांग, वर्णादि चतुष, देवगति प्राज्ञान पूर्वी, अग्रु लघु आदि चार, क्योंकि अग्रु लघु और उपघात तो है अप्रशस्त, फिर भी वो ध्रुवबंधी है तो उसको ले लेंगे हम, प्रशस्त विहायगति, त्रसादि चतुष, स्थिरादि छ, निर्माण, निर्माण में भी ध्रुवबंदी में लेना था, उच्च गोत्र और पांच अंतराय, इनका अन्यतर मनुष्य लिख दिया ना, अन्यतर मनुष्य, मनुष्यनी और पंचेंद्रिय, तिर्यंच योनिनी जीव बंधक होता है, यह प्रथम महादंडक है। ये तिर्यंच में भी संगी पंचेंद्रिय, फिर तिर्यंच भी लेना, पर्याप्त में लेना, योनिनी भी उसको जोड़े। तिर्यंश योनि नहीं है ना, तिर्यंश योनि वाला और तिर्यंश योनि मती दोनों को लेंगे, तिर्यंश योनि भी कहते हैं, योनि मती अलग बात है, तिर्यंश योनि अलग बात है। विशेषण जो यानी तिर्यंश योनि है ना, तिर्यंश पर्याय में जन, हाँ तो उसमें दोनों लेना, नहीं नहीं समूर्षण लेते ही नहीं, बिल्कुल नहीं, समूर्षणों को उपशम होता ही नहीं, यहाँ तो सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंश इन जनरल, और उसी में योनिमति को भी लेना। अन्यतर मनुष्य में सामान्य मनुष्य भी लेंगे, मनुष्य पर्याप्त भी लेंगे, यहाँ लिखा ना विशेषार्थ करो, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि वाला, या पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी, चारों इलियन, जीव प्रथम सम्यक्त्व के सन्मुख होता है, उसके नाम कर्म की परावर्तमान अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं होता। ये परावर्तमान अप्रशस्त प्रकृतियां कौन सी होती है अश्विन भाई?
या शरत या रति सो
नाम कर्म की बता रहे
हैं।
देखो हम देखते हैं ना,
साता के साता, साता भी था
ये, तो वो तो वेदनी का है, फिर भी नाम कर्म में भी स्थिर या अस्थिर, मैंने वो तो कायम के लिए वो नहीं बनेगी, उपलब्ध रहते, पहले से ही
प्रायोगिक लब्धि से ही नहीं,
यानी अभी वो तो अदर प्रवृत्ति की बात थी ना पहले प्रथम समय, तो प्रायोगिक लब्धि से इनका एक एक का प्रकृति बंधन उठता चला गया। तो यहाँ प्रथम समय तो प्राप्त करने वाले के उस जीव के उसके पूर्व से ही इतनी प्रकृतियों का बंधन नहीं है, प्रथम मोक्षम के पूर्व।
हम लोग तो प्रकृति चरण में 42 प्रकृति देखी थी ना,
टोटल 46 देखी थी, 34 यानी 34 बंधाप चरण हुए थे, परंतु वहां तो सभी गतियों की अपेक्षा बात थी। मनुष्यों के लिए तो देव गति बंधेगी, देवों के लिए मनुष्य गति बंधेगी, समझ में आती है ना, वो तो हर एक मार्गना में अलग अलग बात होती
है। क्योंकि ये टोटल प्रकृति 65 हो गए, ये जो इधर बताई ना,
एक बार आप बंधा प्रसरण की बात करें, यहाँ बंधने वाले की बात करें,
नहीं रुक जाती है और यहाँ पे बनती है 65, तो टोटल 120 का हिसाब चलना चाहिए, 122 में से 3 कम कर दो 119 का, वो फिर कर दूंगा
घोटाला करें। हाँ यहाँ तो मात्र यहाँ मनुष्य और तिरियंचों की बात की, उन्हीं की अपेक्षा बात, समझ में आती है, देवों के तो मनुष्य गति भी
बंधेगी,
यहाँ सहन नहीं लिया है, सहन भी बंधेगा, वज्र किनारा सहन है। तो अगर हम ओव से बात करते हैं, आप 148 का हिसाब लगाने जाओ, तो सभी गतियों की अपेक्षा जो होती है बात वो लेनी चाहिए, या तो मात्र मनुष्य और सीरियंसों की बात कर लेंगे, ख्याल में है ना, क्या अलग कहाँ होगा। परावर्तमान का अर्थ होता है कि
जो
बंदेगी या दूसरी बंदेगी, ऐसा कुछ ना कुछ बनते रहते, जैसे गति कोई ना कोई एक बनती है, या जो ऑप्शनल जो है संस्थान, किसी संस्थान में से संस्थान बनता है किसी, तो उसको कहेंगे परावर्तमान। तो कहते हैं परावर्तमान अप्रशस्त प्रकृतियों का बंधन नहीं होता, केवल देवगति के साथ बंधने के योग्य प्रशस्त प्रकृतियों का ही बंध होता है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। यानी जो देवगति का वो पैकेज है ना नाम कर्म का, कितने का है, देवगति सहित इंक्लूडिंग देवगति कितनी प्रकृतियां बनती है, बोल गए 28। देवगति सहित वाले जो आहारक और तीर्थंकर इंक्लूड करेंगे
31 हो जाएगा,
तो 31 हो जाएगा,
31 हो जाएगा,
यह तो अभी ना मिथ्या दृष्टि है। आएगी वो बात अभी सभी उसमें कर्म कांड में आने वाली है,
इसमें भी आएगी ना,
आएगी ना। तो देवगति के साथ बंधने के योग्य प्रशस्त प्रकृतियों का ही बंध होता है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। जिन्हों अभी ऊपर के महादंड में देवगति के योग्य नाम कर्म की कौन कौन सी बन रही है, वहाँ पर एक देवगति बन रहे हैं, देवगत्यानुपूर्वी बन रही है, पंचेंद्रिय जाति बन रहे हैं, शरीर में वैकरेक वैकरेक अंगोपांग, अभी यहाँ तो 4 लिए हैं, हम 28 का हिसाब करना है तो 2 लेंगे, ख्याल में आती बात, क्या क्या लिया आप गिनना बराबर,
देवगति देवगति
देवगत्यानुपूर्वी
2, पंचेंद्रिय जाति 3,
पंचेंद्रिय जाति वैकरेक वैकरेक अंगोपांग
3, 2, 5,
फिर समचतुरस्र संस्थान होगा
6,
और अगुरु लोग आदि 4,
10
हो गए, फिर प्रशस्त विहाय गति होगी
11,
त्रसादि चतुष्क 15,
11, 15,
हीरादि 6,
21,
निर्माण
22, उच्च गोत्र नहीं,
वो
तो
नाम कर्म नहीं है,
सॉरी,
और हमने स्पर्शादि नहीं लिए, स्पर्शादि 4 नहीं लिए थे,
हाँ वर्णगंध स्पर्श
और कौन सा अच्छा लिया, गति जाति शरीर बंधन संघात अंगोपांग, वो बंधन संघात को अलग लेना है कि नहीं, मुझे याद
नहीं, यहाँ पे नहीं लिया है,
नहीं नहीं मैं 28 की बात करती हूँ, उसमें मुझे याद नहीं है, चल है नहीं, इस तरह से उनको ये बंधेगी, चल मैं अच्छी बात, तो देवगति के साथ बनने के योग्य प्रशस्त प्रकृतियों का ही बंध होता है, ऐसा यहाँ समझना है। ये बात खास मनुष्य पीरियंटों के लिए, देव है वो देवगति का बंध नहीं करेंगे, वो मनुष्य गति का करेंगे। तो मनुष्य गति सहित बंधने वाली 29 प्रकृतियों का उनके बंध होगा, उसमें तो सहनन को भी बांधेंगे वो। इसी प्रकार वेदिनी कर्म की अपेक्षा भी जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा जीव असाता वेदिनी का बंधन नहीं करता। वहाँ विशुद्धि लब्धि में ही कहा है, विशुद्धि लब्धि का क्या कि साता वेदिनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध करने वाले ऐसे उसके परिणाम होते हैं, उसी को वहाँ विशुद्धि लब्धि का, यानी वहाँ ही वहीं से उसके साता वेदिनी का बंध चलेगा। मोहिनी की अपेक्षा न स्त्रीवेद और नपुसक वेद का ही बंध करता है और न अरति और शोक का ही बंध करता है। यहाँ टीका में पंचेन्द्रिय तिरियंच योनि पद छिपा हुआ प्रतीत होता है, यानी पंचेन्द्रिय तिरियंच योनि और तिरियंच योनि में अतः उसमें आए हुए पंचेन्द्रिय तिरिक्त जोनिनियों पद से संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त गर्भोत्पन्न, ये गर्भोत्पन्न एक शब्द लगाना आवश्यक है, तीनों वेद वाले तिरियंचों का ग्रहण करना चाहिए। इन सब जीवों के ऐसी अवस्था में आयु कर्म का बंध नहीं होता, ऐसी अवस्था में बताएं उत्तम समय तो के शुरू से हमने देखा ये प्रायोग लब्धि में जो बंधाप, यहाँ तो वो बात यहाँ नहीं अभी उठाई है, बंधापसरण होते हैं, जैसे स्थिति घटती चली जाती है वैसे विशिष्ट प्रकृतियों का बंध रुकने चला जाता है। तो सबसे पहले में पहले वो तो नरकायु लिया, फिर तिरियंचायु, मनुष्यायु, देवायु, सभी चारों ही आयु का बंध रुक जाता है। इस काल में कब तक, प्रथमोत्तम समय का काल पूर्ण होने तक किसी भी आयु का बंधन नहीं होगा, उतने काल देखा ना, सब जीवों की ऐसी अवस्था में आयु कर्म का बंधन नहीं होता। अब दूसरे दंडक का कथन करते हैं, ये दूसरा दंडक किसके लिए है, देवों का, देव और छठे तप के नारकी। अब दूसरे वो हुआ, अब दूसरे दंडक का कथन करते हैं, यानी दूसरा ग्रुप बताएंगे अभी। अभी जो ध्रुवबंदी है उसको तो गिनेंगे ही गिनेंगे, तो पांच ज्ञानावरण, देखो ऊपर के साथ इसको भी कंपेयर करना, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुष वेद, हास्य रति, भय जुगुप्सा, यहाँ तक तो वही का वही है। अब मनुष्य गति, क्योंकि जो देव उपसम समित्व के सम्मुख है, नारकी उपसम समित्व के सम्मुख है, वो मनुष्य गति बांधेंगे, परंतु सातवें नरक वालों को छोड़ना है, जब तक मिथ्यात्व में है तब तक मनुष्य गति नहीं बांधेंगे। तो ये मनुष्य गति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्थ संस्थान, वज्रर शुभ नाराज सहनन, औदारिक शरीर अंगोपांग, वर्ण गंध रस स्पर्श मिला ना, मनुष्य गति प्राज्ञानोपूर्वी, अग्रु लघु आदिचार, प्रशस्त विहाय गति, त्रसादिचार, स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्च गोत्र और पांच अंतराय, इन प्रकृतियों का अन्यतर देव तथा छह पृथ्वियों का नारकी जीव बंधक होता है। यह दूसरा महादंड है। यहाँ गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ,
ये टोटल 70 हो जाएगी ना, आगे 69 थी,
अभी कितनी हुई है
70, एक मिनट का
वो नहीं, मात्र नाम कर्म की गिननी है,
नाम कर्म
29 होती है, क्योंकि मनुष्य गति सहित 29 का बंध है। देखो मनुष्य गति से आप डायरेक्ट काउंट करो ना,
पंचेंद्रिय जाते हैं मनुष्य गति,
औदारिक शरीर तीन,
तीन चार,
चार पाँच छः सात,
सात
फिर अंगोपांगी आठ,
नौ दस ग्यारह बारह,
मनुष्य गति तेरह, अग्रो लघु आदि चार, तेरह चार सत्रह,
सत्रह
अठारह, सत्रह चार बाईस,
बाईस
बाईस और छः अट्ठाईस और एक नौ, निर्माण वाला
उनतीस।
ये जब मनुष्य गति सहित जो बंध है वो वहाँ उनतीस प्रकृतियाँ बनती है। यहाँ तीर्थंकर का कोई सवाल ही नहीं है। ये दूसरा महादंड विशेषार्थ, जिन विशेषताओं का प्रथम महादंड के समय निरूपण कर आए हैं वे सब यहाँ भी यथासंभव जान लेनी चाहिए। यानी पुरुष वेद का होता है, यहाँ से रसिक का होता है, वेदनी का होता है, सातावेदनी का, इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए कि मनुष्य गति नाम कर्म के बंध के साथ सहनन नाम कर्म का भी बंध होने लगता है। इसलिए यहाँ 29वीं वहाँ 28 क्या है ना, देवगति सहित तो 28 का होता है, मनुष्य गति सहित 29
का होता है।
इसलिए प्रथम समय के सम्मुख हुए किसी भी देव और छह पृथ्वियों के नारकी के प्रशस्त स्वरूप वज्रषद नारा सहनन का भी बंद होता है। अब तीसरे महादंडक का कथन करते हैं। यथा ये तीसरा महादंडक किसके लिए होना चाहिए?
हाँ
सात, क्योंकि उसी को छोड़ा था ना। पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्या तो सोलह कषाय, पुरुष वेद, हास्य रति भय जुगुप्ता, यहाँ तक तो वही लिया। अब तिर्यंच गति ले लिया, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्रषभ नाराज, जिसमें म पड़ा है वज्रषभ, वज्रषभ नाराज म नहीं कही, सहनन, वर्ण गंध रस स्पर्श, तिरंज गत्यानुकूली, अग्रु लघु आदिचार, कदाचित उद्योग का बंधक होता है, क्योंकि वो भी प्रशस्त प्रकृति है। यानी हमेशा तिरंज गति सहित कितने का बंध है? तो कहते 29 या 30 का। प्रशस्त विहार गति, त्रसादिचार, स्थिरादिश, निर्माण, नीच गोत्र और पांच अंतरायीन प्रकृतियों का, सातवीं पृथ्वी का, अन्यतर नारकी बंधक होता है। इस प्रकार यह प्रकृति बंध कहा गया। बाकी जो है ना उद्योग को पकड़ेंगे तो
तीस हो गए,
क्योंकि तीरंज में ऑप्शन होता है, ऑर्डिनरी या उद्योग सहित एक एक्स्ट्रा हो जाए। विशेषांक प्रथम सम्यक्त के सम्मुख हुआ सातवीं पृथ्वी का नारकी जीव नाम कर्म की यद्यपि अन्य सब प्रशस्त प्रकृतियों का ही बंध करता है, परंतु वो एकांत से नियम रूप से बहु संबंधी परिणामवश तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और नीच गोत्र का बंधक होने से प्रथम सम्यक्त्व के सन्मुख होने पर भी मात्र इन्हीं का बंध करता है। जब सम्यक्त्व प्राप्त करेगा ना तब वो मनुष्य गति का बंध करेगा, जब तक वो समय दृष्टि है तब तक। सातवें नरक के नारकी के लिए बात है, और ऊपर छठे तक के प्रथमोक्षम के सम्मुख होते ही
मनुष्य गति
का करेगा। और ऐसे भी ऑर्डिनरीली भी वहाँ कर ही देते हैं, मिथ्या दृष्टि, रेगुलर मिथ्या दृष्टि ही करते हैं। तथा तिर्यंच गति के साथ उद्योग प्रकृति का भी बंध संभव होने से कदाचित इनका इसका भी बंध करता है। शेष कथन सुगम। ये बात ख्याल में आई, प्रकृति बंध के बारे में तीन दंडक बताए महादंडक। पहला मनुष्य तिर्यंचों के लिए, दूसरा देव नारकियों के लिए परंतु नारकी छठे तक के लेना, और सातवें नरक के नारकी के लिए तीसरा महादंड बताया। स्थितिबंध भी इन्हीं अर्थात तीनों महादंडकों में कही हुई प्रकृतियों का अंतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण होता है। जो बंद वहाँ होता है, बंद होता है, उसका अंतः कोड़ाकोड़ी सागर बंद होता है, क्योंकि यह विशुद्धतर परिणामों से युक्त होता है। इसलिए इसके उससे अधिक स्थितिबंध संभव नहीं है। पहले जो हमने अंत कोड़ा कोड़ी सागर देखा था वो स्थिति सत्व था, सत्ता में पड़ा हुआ, और ये बंधन नया बंधने वाला। जितनी स्थिति होती है अभी विशुद्ध परिणाम है उससे भी संख्यात वे भाग प्रमाण बंध होगा। अब बाकी तो बात नहीं दी, स्थिति सत्व कैसे घटा, स्थिति बंध कैसे घटा, तो उसकी तो बात शायद होगी आगे। स्थिति सत्व स्थिति कांडक घात के द्वारा घट जाता है, और स्थिति बंध स्थिति बंधापसरण होते जाता है उसके द्वारा बंध घटता है। अनुभाग बंध भी इन तीन महादंडकों में जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका द्विस्थानीय होता है, तथा शेष प्रशस्त प्रकृतियों का चतुस्थानीय होता है। तो ये पहले महादंडक में कौन कौन सी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, थोड़ी दो चार के ना मेरे नाम में कुछ अप्रशस्त प्रकृतियां बता दें। ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतरा है, मिथ्या तो है, सोला कथा है, पुरुष वेद है। पुरुष वेद हास्य रति क्या है, शुभ है क्या, शुभ
नहीं आता, शुभ है शुभ बोलने नहीं नहीं गाती नाम कर लो, गाती नाम कर लो, अरे
गाती के सर्व आपको गाती के सर्व प्रकृति एकदम से फटके पूछेंगे तो हंसते रहती प्रशस्त लगता है।
पुरुष वेद भी अच्छा लगता
है, अच्छा लगता है। अब ये तो हमने प्रकृति बंदर स्थिति बंदर की बात देखी, अब प्रदेश बंद भी। प्रदेश बंद भी पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता वेदनीय, बारह कषाय। पुरुष वेद हास्य रति भय जिगुप्सा, तीर्यंच गति मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर तेजस शरीर कार्मण शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग, वर्ण गंध रस स्पर्श, तीर्यंच गत्यानुकूली मनुष्य गत्यानुकूली, अगुर लघु चार आदि चार, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर, स्थिर अगुर लघु चार उद्योत त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर, स्थिर शुभ यशस कीर्ति निर्माण उच्च गोत्र और पांच अंतराय, इन प्रकृतियों का अनुसृष्ट होता है। यहाँ तीर्यंच गति और तीर्यंच गत्यानुकूली भी लिया है। यानी जब वो बंधापसरण नहीं हुआ तब की बात
है। यहाँ पे योग ये जो सम्मुख जीव है उसका उत्कृष्ट योग नहीं हो सकता है ऐसे कहना है, क्योंकि योग के कारण प्रदेश बंद होगा।
दोनों में वो अन्यत्र उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दोनों हो सकता है। ये तो हमने देखा ना अनुत्कृष्ट होता है, कौन सा अनुत्कृष्ट होता है तो हमने ये अभी लिस्ट बना। अब कहते निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला त्यान वृद्धि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चतुष देवगति वैकृत शरीर समचतुर संस्थान, वैकृत शरीर अंगोपांग वज्रशुभ नाराज सहनन देवगति प्राज्ञान पूर्वी प्रशस्त विहाय गति सुभग सुस्वर आदे और नीच गोत्र, इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद होता है। इस प्रकार दूसरे गाथा सूत्र के दूसरे अवयव का आश्रय कर बंध का अनुमार्गण कर अब प्रकृतियों के उदयावली में प्रवेश और अप्रवेश का अनुसंधान करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं।
कहते इसी क्यों लिया, एक ही योग के साथ इस कुछ प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट होता है और कुछ प्रकृति का उत्कृष्ट भी हो सकता है, और यहाँ पे तो इसे कुछ नहीं है प्रशस्त प्रशस्त ये पे क्योंकि 12 कक्षाएं में से 4 कक्षा यहाँ पे लिया, 12
अनंतानुबंधी को उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट में लिया
हाँ।
और 12 कक्षाएं को ऊपर अनुत्कृष्ट
अनुत्कृष्ट में
ही
लिया।
उसकी बात आगे आएगी शायद इन्फ्रेंस तो नहीं। बस अनुत्कृष्ट होता है इतनी बात बताई, और यहाँ उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट होता है ये भी बात बताई। इस प्रकार दूसरे गाथा सूत्र के दूसरे अवयव का आश्रय कर, बंध का अनुमार्गण कर, अब प्रकृतियों के उदयावली में प्रवेश और अप्रवेश का अनुसंधान करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। करियावलियम पविसंचित की विभाषा, कितनी प्रकृतियां आवली में प्रवेश करती हैं, इस पद की विभाषा। दर्शन मोह के उपशामक जीव के उदय और अनुदय रूप से कुछ प्रकृतियां अनुदय रूप है, वो आवली में रहेगी, वहां पर एक समय ऊपर भी रहेगी, तो उदय और अनुदय रूप से उदयावली में प्रवेश करने वाली मूल और उत्तर के भेद से अनेक प्रकार की प्रकृतियां कितनी हैं, कितनी होती हैं, इस प्रकार इस पृष्ठा निर्देश का निर्णय करने के लिए इस समय अर्थ विभाषा करते हैं। इस प्रकार सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है। मूल पयो सौवाओ पविसंति, मूल प्रकृतियां सब प्रवेश करती हैं, क्योंकि सभी मूल प्रकृतियों का प्रकृति में उदय देखा जाता है। आठवीं प्रकृतियों का उदय उत्तर पैड़ियों भी जाओ अति ताओ पविसंति, उत्तर प्रकृतियां भी जो सत्व स्वरूप है वे प्रवेश करती हैं, इन्हें जो है वो सभी प्रवेश करती। उदयावली में तो प्रवेश है, उदय है कि नहीं उसकी बात अलग।
तो तीन प्रकृतियों को छोड़कर सभी उदयावली में
हाँ, तीन यानी उन्होंने पांच गिनाए ना,
वो चार
चतुष्क लिया और फिर संकल्प। विद्यमान उत्तर प्रकृतियों के प्रकृति में उदय अनुदय रूप से उदयावली में प्रवेश होने में रुकावट का अभाव, यानी उदयावली में प्रवेश करने से कोई वहाँ कोई रुकावट नहीं। इतनी विशेषता है कि जिसने परस्भव संबंधी आयु कर्म का बंधन नहीं किया है, उसके आयु कर्म की एक प्रकृति सत्ता में विद्यमान है, वह नियम से उदयावली में प्रवेश करती है, तथा जिसने परभव संबंधी आयु कर्म का बंध कर लिया है, उसके सत्कर्म रूप से दो प्रकृतियां पाई जाती हैं। इसलिए भुज्यमान परभव संबंधी आयु के समान भुज्यमान प्रभाव संबंधी क्यों लिखा, भुज्यमान आयु के समान चाहिए। भुज्यमान के समान प्रभाव संबंधी आयु के भी ऐसा चाहिए। भुज्यमान आयु के समान प्रभाव संबंधी आयु के भी इसलिए भुज्यमान प्रभाव संबंधी आयु के समान उसके भी विद्यमान पने की अपेक्षा विशेषता का अभाव होने से ऊपर देखो कैसा लिखा है, तत्स भुंजमानस्तेव परभविया उष्टवी विद्यमानस्तम पड़ी विशेषा भावादो। यानी इसलिए भुज्यमान आयु के समान उसके परभव संबंधी आयु के भी विद्यमान पने की अपेक्षा विशेषता का अभाव होने से, समझ में आया ना क्या करना है, इसलिए भुज्यमान आयु के समान उसके परभव संबंधी आयु के भी
विद्यमान की अपेक्षा
भुज्यमान के समान विद्यमान आयु के समान उसके प्रभव संबंधी आयु के भी विद्यमान पने की अपेक्षा विशेषता का अभाव है। अभी ठीक हुआ ना वाक्य? उदयावली में प्रवेश करने रूप अति प्रसंग होने पर उसका निवारण करने के लिए सूत्र को कहते हैं। बाकी सभी जो सत्ता में है वो सब उदयावली में प्रवेश करेंगे। आप कहेंगे तो मरण आया होगा तो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो नहीं करते, वहाँ कुछ उजीर्णा से नहीं आता जल्दी, बस वहाँ यहाँ अंतिम समाप्त हुआ उसका उदय होता है। नवरी जयी परभविया उम्मत थी तम न पविसदी, यानी इतने काल में उसका मरण भी नहीं होगा। यदि उदयावली में प्रवेश करेगा अवली इतना ही काल बाकी है तो उसको वो प्रथम उत्तम समय को भी नहीं होगा। इतनी विशेषता कि यदि प्रभव संबंधी आयु है तो उदयावली में प्रवेश नहीं करती। क्योंकि जिसके जघन्य रूप से भी अंतर्मूर्त मात्र ही विद्यमान आयु शेष है, ये नियम बताइए, यानी अंतर्मूर्त तो आयु शेष रहनी चाहिए, तो जिसके जघन्य रूप से भी अंतर्मूर्त मात्र ही विद्यमान आयु शेष है उसके प्रथम समय के ग्रहण की योग्यता होती है। एटलीस्ट अंतर्मूर्त तो वहाँ बाकी होना ही चाहिए। ऐसा नियम है कि जो जीव परभव संबंधी आयु का बंध करता है उसके विद्यमान आयु का आबाधा काल बंध के समय जितनी विद्यमान आयु शेष हो उतना होता है, तथा जो जीव प्रथम समित्व को उत्पन्न करता है उसका प्रथम समित्व के उत्पन्न होने के काल में तथा प्रथम समित्व के काल में मरण नहीं होता। करण लब्धि में और उत्तम सम्यक्त्व के काल में मरण नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर प्रथम सम्यक्त्व के सम्मुख हुए जीव के प्रभव संबंधी आयु का उदयावली में प्रवेश का निषेध किया है। इस प्रकार दूसरी गाथा के तीसरे अवयव के अर्थ का विशेष व्याख्यान करके अब चौथे अवयव का आश्रय कर मूल और उत्तर प्रकृतियों की उदीर्णा और अनुदीर्णा के अनुसंधान करने के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं। उदीर्णा ने अभी वो उदय रूप की बात की। कदिनम व प्रवेशकों की विहासा, वह कितनी प्रकृतियों का प्रवेशक होता है, यह प्रश्न सही। प्रश्न चिन्ह मूल और उत्तर प्रकृतियों के भेद से अनेक प्रकार की कितनी प्रकृतियों का यह जीव उदीर्णा रूप से प्रवेशक होता है, इस प्रकार इस रूप से प्रवृत्त हुए शिक्षा वाक्य के अर्थ का इस समय विशेष व्याख्यान करते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। मूल पयड़िनम सव्वासिम प्रवेशक, मूल प्रकृतियों का सबका प्रवेशक होता है क्योंकि सबका उदय वाला है ना। मूल प्रकृतियों का तो सबका ही यह जीव प्रवेशक होता है क्योंकि सभी मूल प्रकृतियां बिना रुकावट के उदीर्णा रूप से प्रवेश करती हुई पाई जाती है। उत्तर पयड़िनम पंच नानावरणीय चतुदंशनावरणीय मिच्छत्र पंचेन्द्रिय जादि तेजा कम्मय शरीर वर्ण गंध रस फास अगुर ग लहुग उवघाद परघाद उत्सास तस बादर पच्चत पच्चते शरीर स्थिर अस्थिर शुभाशुभ निमिन पंचंतर्याण नियमा पवित्र। उत्तर प्रकृतियों में पांच ज्ञानावरण चार दर्शनावरण को कौन लिया? हाँ अश्विन भाई,
निद्रा का उदय नहीं,
निद्रा का उदय नहीं, जागृत अवस्था में ही समत्व की प्राप्ति होगी। मिथ्यात्व पंचेंद्रिय जाति तेजस शरीर कार्मण शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ ये तो नित्योदयी है ना, इसे दोनों दोनों को लिया। निर्माण और पांच अंतरायन प्रकृतियों का नियम से प्रवेश होता है। आपको पूछेंगे अनंतानुबंधी को क्यों नहीं लिया, छोला कचाई क्यों नहीं कहे,
प्रतिपक्ष वाले होते
हैं उसके क्रोध होगा या मान होगा, इसलिए उसको नहीं, जिसकी बात बाद में शायद देखेंगे भी अलग से, क्योंकि ये प्रकृतियां प्रकृति में ध्रुवोदय देखी जाती है, ये ध्रुवोदय शब्द आया है। इन्हें पांच ज्ञानावरण तो उनका उदय चलता है ना, कहाँ तक चलेगा, बारहवें के अंदर उदय की बात है। अब आगे बढ़ेंगे विशेषांक। प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण के सम्मुख हुए किसी भी गति के जीव के अधकरण के प्रथम समय में पांच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों का नियम से उदय होता है और इनका यहाँ उदय होने का नियम है, इसलिए इनकी यहाँ उदीर्ण होने में कोई रुकावट नहीं पाई जाती। जिनका उदय है उनकी वहाँ उदीर्ण चलती है। साधा साधारणम अन्नदरस्थ प्रवेशक हो, साता और असाता इनमें से किसी एक का प्रवेशक होता है। अब बंद में तो हमने साधा का ही बंद होता है मान लिया, समझ लिया, अब यहाँ तो उदीर्ण या उदय की बात चल रही है, तो साता या असाता, क्योंकि ये दोनों प्रकृतियां परावर्तमान उदय स्वरूप है। परावर्तमान उदय ने वो तो अंतर्मुख अंतर्मुख में पलट कर देते हैं, इसलिए इनका युगपत प्रवेशक होना संभव नहीं है, इसलिए किसी एक का प्रवेशक कहा। सदन्नम कथायनम चिन्नम वेदानम दुन्नम जुगलानम अन्नदरस्य प्रवेशक, चार कषाय तीन वेद और दो युगलों में से अन्यतर एक एक का प्रवेशक होता है। यानी चार क्रोध हो गए या चार मान हो गए, क्योंकि ये प्रकृतियां परस्पर विरुद्ध है इसलिए इनका युगपत प्रवेश करना शक्य नहीं है। भय दुगंछाणम किया प्रवेशक, भय और जुगुप्सा का कदाचित प्रवेशक होता है। जो हमने देखा ना उसमें तो कौन सी पॉसिबिलिटी है, दोनों का उदय होगा या एक किसी का होगा या दोनों का भी नहीं होगा, क्योंकि उनके उदय से रहित अवस्था भी देखी जाती है। यदि प्रवेशक होता है, होता भी है, तो कदाचित किसी एक प्रकृति का प्रवेशक होता है, कदाचित दोनों ही प्रकृतियों का प्रवेशक होता है, ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। चहुन्नम आहुणम, चहुन्नम आहुवाणम अन्नदरस्य प्रवेशक, चारों आयुओं में से किसी एक आयु कर्म का प्रवेशक होता है, यानी जो विद्यमान है, क्योंकि ये चारों आयु पृथक पृथक प्रतिनियत गति विशेष से प्रतिबद्ध है, इसलिए तदनुसार ही उस आयु कर्म के उदय का नियम देखा जाता है। पृथक पृथक प्रतिनियत गति विशेष से प्रतिबद्ध है, यानी अपनी अपनी गति के जो उदय चल रहा है उसी की जो विद्यमान आयु है उसका उदय चल रहा है। चतुर्णम गई नामानम दोन्नम शरीराणम छन्नम संथानानम दोन्नम अंगोवंगाणम अन्नदरस्य प्रवेशक, चार गति नाम दो शरीर छह संस्थान और दो अंगोपांग, इनमें से अन्यतर एक एक का प्रवेशक होता है। यहाँ पर अन्यतर पद का गति आदि प्रत्येक के साथ संबंध करना चाहिए। यानी जो गति है उस जाति के उसके शरीर और अंगोपांग का वहां पर उदय होगा। छन्नम संगणनाणम अन्नदरस्थ सिया, छह सननों में से कदाचित किसी एक का प्रवेशक होता है। यानी जिसका उदय वो तो चेंज नहीं होता है, उदय तो ही रहेगा, जिसका जो है वो उसका प्रवेशक है। प्रवेशक को इस पद का यहाँ पर अधिकार व संबंध कर लेना चाहिए। इसलिए छह सननों में से यह जीव किसी एक का कदाचित प्रवेशक होता है और कदाचित प्रवेशक नहीं होता। ये प्रेरणा बिन कदाचित प्रवेशक नहीं होता क्यों कहा? बहुत अच्छा, देव और नाचियों के कोई सहन नहीं है तो उसके उदय का सवाल है। इस प्रकार सूत्र का अर्थ के साथ संबंध कर लेना चाहिए। यदि तिरेंच अथवा मनुष्य प्रथम सम्यक को प्राप्त होता है, इनमें से किसी एक का नियम से प्रवेशक होता है, क्योंकि उनके कोई ना कोई सहनन का उदय तो रहेगा। और यदि देव अथवा नारकी उपशम सम्यक के अभिमुख होता है तो नियम से इनका अप्रवेशक होता है, ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। विशेषा, वैकृत शरीर का संस्थान तो होता है पर सहनन नहीं होता। तो वैकृत शरीर में कौन सा संस्थान होता है अश्विन भाई?
संस्थान देव हुंडक संस्थान और समचतुरस्थ।
देवों के समचतुरस्थ होगा, देवों के समचतुरस्थ होगा, नारकी उनके हुंडक होगा।
बराबर बोला मैंने? नहीं 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 मैं
यानी देवों में समचतुरस्थ होगा, नारकियों में हुंडक होगा। तो देवों के तो सहन नहीं होता, ये बात यहाँ बताएं। हंस भाई को कुब्जा होता है, हुंडक यानी ऐसा कोई वक्तव्य ऐसा वो एक हिंदी आदि में कहेंगे और नारकियों में कहेंगे वो तो कैसे भी विचित्र ऐसा कोई। इसलिए देव नारकियों के छह सहनों में से किसी भी प्रकृति का प्रवेशक नहीं है ऐसा कहेंगे। उद्योगस्य सिया, उद्योग का कदाचित प्रवेशक होता है। मयंक भाई ये कौन होगा उद्योग का प्रवेशक? उद्योग का उदय किसके होगा? तीरियंस। तो तीरियंस में वो कदाचित रहते हैं। प्रवेश को इस पद का पहले के समान अधिकार व संबंध करना चाहिए। शंका, परंतु उद्योग का कदाचित प्रवेश बना कैसे बनता है? समाधान, नहीं क्योंकि पंचेंद्रिय तीरेंचों में ही उद्योग के उदय से युक्त किन्हीं जीवों के उद्योग का प्रवेशक बना देखा जाता है। यानी अन्य गतियों में तो उद्योग है ही नहीं,
तीरेंचों
में ही पाया जाता है। तीरेंचों में है लेकिन जैसे पंचेंद्रिय तक के जीवों को, परंतु यहाँ सम्यक की बात चल रही है तो यहाँ पंचेंद्रिय तीरेंच
उसमें भी सभी को होगा ऐसे नहीं है,
यही तो बात बता रहे हैं ना।
पंचेंद्रिय
होगा तो कहाँ होगा, तो मात्र तीरेंचों में। विशेषा, उद्योग का उदय किसके होता है? तो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के किसी तीरेंचों, सभी को तो नहीं होता। अब यहाँ सम्यक के अभिमुख वाले किसके होगा उदय?
तीरेंचों
में जिसको उद्योग का उदय है उसके होगा। विशेषा, यहाँ नारकी मनुष्य और देवों में उद्योग का उदय उजीर्णा संभव नहीं है, केवल तीरेंचों में ही, उनमें भी किन्हीं तीरेंचों में ही उसका उदय उदीर्णा संभव है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर उद्योग का कदाचित प्रवेशक होता है यह सूत्र वचन कहा है। दो विहाय गई सुभग दुभग सुस्तर दुस्तर आदेश आदेश अनादेश जैसा कि भी अर्थ जैसे कि भी अन्न दरस्त पवे सको दो विहाय गति सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदेय अनादेय और यह कीर्ति और यह कीर्ति इन युगलों में से किसी एक एक प्रकृति का प्रवेशक होता है। यानी इनके उदय होते हुए भी कोई रुकावट नहीं समय को होने। यहाँ उदय की बात चल रही है ना, वहां तो पहले हमने बंद की बात देखी थी, यहाँ उदय की बात चल रही है। यह जो इन पांच प्रत्येक युगल में से किसी एक एक प्रकृति का प्रवेशक होता है, इस प्रकार यहाँ सूत्र का अर्थ के साथ संबंध करना चाहिए। एक एक का ऐसा भी नहीं कि पहले थोड़े काल के लिए सुबह भी आ गए, ऐसा नहीं है, जिसका है उसका चलता रहता है। ये यशकीर्ति और यशकीर्ति का पलटेगा नहीं, इसकी बात नहीं है। शेष कथन शुभम विशेषांग में चेंज होगा
नहीं होगा ना, नहीं नहीं भाव प्रत्येक एक भाव में एक ही का होगा। एक भाव में हो सकता है पलटना।
वो कहते हैं किसी को कुछ खिला दिया तो उससे आवाज बदल जाता है
नहीं। हाँ सुना है, पर ऐसे नहीं, उदय की अपेक्षा एक भाव में एक ही का उदय होगा ऐसे भी पूछ रहा है। मेरे ख्याल से तो एक का ही उदय होता है ना।
चले आगे देखें, यह संकीर्ति तो लगता ही।
हाँ यह संकीर्ति में होता है, पर यहाँ पे
क्योंकि बाकी तो उदय की विस्तृति उसकी तो 13वें तक है। सुस्वर दुस्वर चलो देखेंगे। विशेषांक देवों में सूत्रोक्त सभी शुभ और राशियों में अशुभ प्रकृतियों का उदय उदीर्णा होती है, किंतु इनको छोड़कर अन्य दो गति के जीवों में उक्त युगलों में से प्रत्येक युगल संबंधी प्रशस्त या अप्रशस्त किसी एक एक प्रकृति का उदय उदीर्णा संभव है, यह उक्त सूत्र का तात्पर्य है। समझ में न, जहाँ तो देवों में शुभ का ही उदय है तो वहाँ तो कोई सवाल नहीं, परंतु जिनमें ये दो गति के जीवों में उक्त युगलों में से किसी भी एक का उदय उदीर्ण संभव, ये बात बताना चाहिए। उच्च नीचा गोदान मन्न दरस्त प्रवेशक, उच्च गोत्र और नीच गोत्र इनमें से किसी एक एक प्रकृति का प्रवेशक होता है, यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार ओग से प्रकृति उदीर्णा का कथन किया, इसी प्रकार प्रकृति उदय का भी अनुमार्गन कर लेना चाहिए। प्रकृति उदय बताते हैं कि प्रकृति उदय, प्रकृति उदय क्योंकि क्योंकि इससे उसमें कोई विशेषता नहीं है। विशेषता प्रकृति में ऐसा समझना चाहिए कि दर्शन मोह की उपशमना के सम्मुख हुए जीव के चारों गतियों में यथासंभव अधकरण के प्रथम समय में जिन प्रकृतियों का उदय है उन्हीं की उदीर्णा भी है। यही कारण है यहाँ उदय और उदीरणा में र विशेषता न होने का विधान है। अब सूत्र निर्दिष्ट ही अर्थ का विस्तार से कथन करने के लिए आदेश संबंधी कुछ प्ररूपणा करें। यथा आदेश से चारों ही गतियों में ज्ञानावरण की पांचों ही प्रकृतियां उदय रूप से प्रविष्ट होती है और प्रविष्ट कराई जाती है। ज्ञानावरण की चारों ही प्रकृतियों का तथा दर्शनावरण की चारों ही प्रकृतियों का तथा सातावेदनीय और असातावेदनीय में से किसी एक का चारों ही गतियों में उदय और उदीर्णा होती है। नरकों की भी तो होती तो है, मोहनी की 10, 9 या 8 प्रकृतियां चारों गतियों में उदय और उदीर्णा रूप से भेजी जाती है। प्रेरणा बिना आप 10 प्रकृतियां कहेंगे। हाँ पहले मिथ्यात्व होगी ना, मिथ्यात्व हाँ पहले किसको गिने, हाँ एक ही बात बस भाई जी, उसका दोनों को लेंगे तो 10 हो जाएगा, एक को लेंगे तो 9 हो गया, दोनों को ही नहीं लेंगे तो हाँ। तो इसलिए कहते 10, 9 या 8 प्रकृतियाँ चारों गतियों में उदय और उदीर्णा रूप से भेजी जाती है। चारों आयु में से जिस गति में जो आयु भेजी जाती है उसका उस गति में वेदक और उदीरक होता है। नाम कर्म की अपेक्षा यदि नारकी है तो नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, वैकृत शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, कुंड संस्थान, ये बात हमने देखी थी ना, वैकृत शरीर अंगोपांग, वर्ण गंध रस स्पर्श, अग्र लघु उपघात प्रघात उच्छ्वास, अप्रशस्त विहार गति, उनके लिए तो ये नियम है। त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर, स्थिर स्थिर शुभ शुभ, ये सब में लेना। अब यहाँ पर दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयशस् कीर्ति और निर्माण, इन 29 प्रकृतियों का वेदक और उदीरक होता है। और यदि तीर्यंच है तो तीर्यंच गति पंचमीय जाति, अवगारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, 6 संस्थानों में से कोई एक संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, 6 सहननों में से कोई एक, वर्णादि 4, अगुर लघु आदि 4, कदाचित उद्योग, 2 विहाय गतियों में से कोई एक, त्रसादि 4, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, शुभग दुर्भग में से कोई एक, सुस्वर दुस्वर में से कोई एक, आदे अनादे में से कोई एक, यशस् कीर्ति अयशस् कीर्ति में से कोई एक और निर्माण, इन 30 और 21 संख्या विशिष्ट प्रकृतियों का प्रवेशक होता है, यानी उसका उदय चलता है। तथा तैयार हुआ, तथा नीच गोत्र और 5 अंतराय प्रकृतियों का प्रवेशक होता है, तीर्यंच है इसलिए नीच गोत्र लिया। विशेषण, जिन संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तीर्यंचों के उद्योग का उदय और उदीर्णा होती है वे 21 प्रकृतियों के प्रवेशक होते हैं। और जिनके उद्योग प्रकृति का उदय और उदीर्णा नहीं होती वे 30 प्रकृतियों के प्रवेशक होते हैं। शेष कथन सुगम। नाम कर्म में से ये बात चल रही है ना। और यदि मनुष्य है तो उद्योग को छोड़कर मनुष्य गति के साथ इन्हीं प्रकृतियों का वेदन करता है। इतनी विशेषता है, यहाँ पर नीच गोत्र और उच्च गोत्र में से किसी एक प्रकृति का कथन करना चाहिए। मनुष्यों में नीच गोत्र या उच्च गोत्र दोनों ही ऑप्शन हैं। तीर्यंचों में, नारकियों में नीच गोत्र ही लगता है। विशेषता, मनुष्यों में तीर्यंच गति का उदय न होकर मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होता है, इसलिए यहाँ टीका में मनुष्य गई सह गदाओ ऐसे पाठ का उल्लेख किया है। शेष कथन सुगम। और यदि देव है तो देव गति, पंचेंद्रिय जाति, वैकृत शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैकृत शरीर अंगोपांग, वर्णादि 4, अग्र लघु आदि 4, प्रशस्त विहार गति, त्रसादि 4, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशस् कीर्ति और निर्माण का उच्च गोत्र और 5 अंतराय के साथ प्रवेशक और वेदक होता है। देखो स्थिर और अस्थिर में से बनने में एक ही बनने में उदय में दोनों का। अब इस सूत्र द्वारा सूचित हुए स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन तीनों के उदय और उदीर्णा का कुछ अनुगम करेंगे। हमने तो अभी प्रकृति के उदय की बात देखी, अब स्थिति उदय, अनुभाग उदय और प्रदेश उदय। यथा आयु कर्म को छोड़कर इन्हीं प्रकृतियों की अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थितियां, और आयु कर्म की तत्प्रायोग्य स्थितियाँ अपकर्षित कर उदय में दी जाती है, यह स्थिति उदीर्णा है। कितने निषेकों में से उदीर्णा होकर उदय में आते हैं? तो यहाँ तो कहते कि जितनी इनकी स्थिति उतने, और आयु में
तत्प्रायोग्य
विशेषण। यहाँ चारों आयुओं की स्थिति की अपकर्षण द्वारा उदीर्णा कही गई है। इस पर यह प्रश्न होता है कि क्या नारकी, भोगभूमि, क्षीयंत और मनुष्य तथा देवों की आयु की भी अपकर्षण द्वारा उदीर्णा होती है? यदि होती है तो परमागम में इन जीवों को अनपवर के आयु वाला क्यों कहा गया है? समाधान यह है कि इन जीवों की विद्यमान आयु का भोग तो पूरा होता है, परंतु इन आयुओं के यथासंभव प्रत्येक निषेक में कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो उपशम, निदत्त और निकाचित रूप नहीं होते। उनकी भोग काल में उदीर्णा संभव होने से यहाँ चारों आयुओं की अपकर्षण द्वारा उदीर्णा कही गई है। शेष कथन शिवम। हमने देखा है आयु के उदय के समय से लेकर उसके उदीर्णा निरंतर होती है। कब तक?
एक अवली बाकी।
हाँ, मरण को एक अवली बाकी, तब तक। शेष कथन शिवम। अनुभाव उदीर्णा भी यहाँ निर्दिष्ट की गई प्रशस्त प्रकृतियों की अनुभाव, यानी किस रूप में उदीर्णा होकर उदय में आएंगे, तो प्रशस्त प्रकृतियों की चतुस्थानी होती है, जो बंध स्थान से अनंत गुणी हीन होती है।
अनुभाव तो प्रशस्त प्रकृति का अनंत गुणा हीन होकर उदय में आएगा।
हीन होकर उदय में कैसा नहीं कुछ कहेगा। यहाँ जो बंध रहा है, नया बंध हो रहा है, वो अनंत गुणा है।
हाँ,
ये बात बताना। और हमने देखा था अंतर्मूर्ति में तो नियम से अनंत गुणाहीन होकर ही उदय में आता है। बनते समय तुरंत तो उदय नहीं होगा, अवली काल तो बीत ही जाएगा। ये बात हमने अनुभाव के प्रकरण में देखी थी। अप्रशस्त प्रकृतियों की द्विस्थानी होती है उदीर्ण, और उसमें भी सत्व स्थान से अनंत गुणी होती है। प्रदेश उदीर्णा भी इन्हीं प्रकृतियों की अजघन्य अनुस्पृष्ट होती है। इसी प्रकार उदय भी जानना चाहिए। इस प्रकार दूसरी गाथा के अर्थ का विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ। विशेषार्थ। प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों के होता है, इसलिए यहाँ प्रशस्त प्रकृतियों की अनुभाग उदीर्णा चतुस्थानीय होकर भी वह बंध स्थान से अनंत गुणी हीन रहता है। यहाँ उदय को भी उदीर्णा के समान जानने की सूचना की है। उसका आशय यह है, जिन प्रकृतियों की यहाँ उदीर्णा है उन्हीं का उदय भी है। जो कर्म अपकर्षण और उत्कर्षण आदि प्रयोग के बिना स्थिति क्षय को प्राप्त होकर अपना अपना फल लेते हैं, उन कर्म स्कंधों की उदय संज्ञा है। और जो बड़ी स्थिति में स्थित कर्म अपकर्षण द्वारा फल लेने के सम्मुख किए जाते हैं, उनकी उदीर्णा संज्ञा। प्रकृति में ऐसा समझना चाहिए, जिस गति में दर्शन मुख के उपशम के सम्मुख हुए जीव के जिन कर्मों का उदय है उनकी उदीर्णा अवश्य होती है। शेष कथन सुगम।
जो कर्म अपकर्षण और उत्कर्षण आदि प्रयोग के बिना स्थिति सही को प्राप्त होकर,
मैंने रेगुलर अपना काल पूरा होकर जो उदय में आता है वो उदय, और काल के पहले ही अपकर्षण के द्वारा जो उदय में आते हैं उसको
उदीर्णा।
अब तीसरी गाथा के अवसर प्राप्त अवतार को करेंगे। यथा तीसरी गाथा का अवयव बताएंगे ना कि हमसे जीयदे पूर्वम वंदे न उदये न वा, दर्शन मोह के उच्चम काल से पूर्व बंदर उदय की अपेक्षा कौन कौन से कर्माओं क्षीण होते हैं इसकी विवरण। ये आपका प्रश्न था ना, क्षीण होते हैं क्या, वो यहाँ बता रहे हैं। इस तीसरे गाथा सूत्र के पूर्वार्ध के अर्थ का विशेष व्याख्यान इस समय करना चाहिए, युक्त वचन का तात्पर्य है। यह तीसरी गाथा का पूर्वार्ध है। दर्शन मोह के उपशामक के सब कर्मों के प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशों का आश्रय कर बंदर उदय की अपेक्षा क्षीण पने का अनुसंधान करने के लिए आया है। उनमें से सर्वप्रथम प्रकृतियों की बंद विच्छित्ति के क्रम को दिखाने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। बंद रुक जाना, उसके बाद यहाँ बताएंगे। हाँ, ये बंधापसरण है। वहाँ कौन कौन सी, उस समय क्या पोजीशन है, अध प्रवृत्तकरण के प्रथम समय में पोजीशन क्या है, कौन से बंध से रुक गई है ऑलरेडी। असादा वेदनीय इच्छिनम से वेद अरधि शोक चौधु आउ निरयगदि चदुजादि पंच संख्यान पंच संघटन निरयगई पावगान पूरी आदाव अपसत्थ विहाय गई हावर सुम अपजत साहारण अस्थिर अशुभ दुभग दुष्कर अनादेश्य अजस गिद्धि नामानी एदानी बंधेन वोच्छिन्नानी। दर्शन मोह के उपशामक की बात कर रही, इसमें से कितनी प्रकृतियां बाद में भी बंधेगी, उत्थान समय के बाद इसमें से कौन सी वो देखेंगे, असाता वेदनी, क्योंकि अभी नहीं बन रही है परंतु वो तो छठे में विकसित हुई। ख्याल में आती है बात, यहाँ क्या कहना चाहते हैं, अभी उत्तम काल पूरा होने तक ये नहीं बंधेगी।
अरति शोक
तो असाता वेदनिया त्रिवेद नपुसक वेद अरति शोक चार आयु नरक गति चार जाति पांच संस्थान पांच सहनन नरक गति प्राज्ञान पूर्वी आतक अप्रशस्त विहार गति स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण अस्थिर अशुभ दुर्भग दुष्वर अनादेय और अयशस्थिति, ये प्रकृतियाँ बंध से पहले ही विच्छिन्न हो जाती, यानी उनकी बंध विच्छिति पहले ही हो जाती है। ऐसा सूत्र में निर्दिष्ट की गई इन प्रकृतियों की दर्शन हो के उपशामक जीव के पहले ही क्रम से बंध विच्छिति हो जाती है। पहले वो प्रायोगिक लब्धि में होती ना उनकी, उसको बंधाक्षरण कहते हैं। यह कथन का तात्पर्य है। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा ही अभी क्रम से सारी बातें आने वाली हैं। ये 64 वाला पॉइंट सूत्र का स्पष्टीकरण कल से ले जावानी के ज्ञान से तुझे लोकालो तो वाणी मस्तकनो सदा देतो।